राम हरे 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 कृष्णा। आप सबका स्वागत करते हैं आज सायंकाल के हरि कथा में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से, और धन्यवाद करते हैं मालपानी परिवार का, विशेष रूप से श्रीमान गणेश जी मालपानी और इंदिरा जी का 56 साल विवाह साल की गांठ है, उसके उपलक्ष में उनके भाई गजानन जी और उनके सुपात्र हरि जी नटवर विष्णु जी और बनवारी गिरधारी और गोविंद परिवार के साथ इस सत्संग का आयोजन किया है। तो एक कथा पहले सुन लीजिए, एक बहुत पुराने जमाने में गांव के अंदर चौधरी हुआ करते थे, गांव में चौधरी प्रेसिडेंट हुआ करते थे पुराने जमाने में, मुखिया कहते थे कुछ भी उसको कहें गांव का। वो बहुत बड़ा धार्मिक आदमी था, गांव में सत्संग का आयोजन करता था, साधु संतों को बुलाता था, मंदिर बावड़ी बनाए थे, सेवा का काम सब था। लेकिन किसी कारण से समय का प्रभाव ऐसे था कि बच्चे कहीं बाहर चले गए कोई काम में, एक ही बच्चा वैसे था, एक ही लड़का उसको, लेकिन वो लड़का किसी तरीके से धार्मिक रास्ते के ऊपर उसका मन नहीं लग रहा था। तो पिताजी ने कहा ठीक है, हमने तो अपना जीवन बिताना है, बिता देंगे, लेकिन संस्कार पीछे कैसे छोड़ के जाएं? असल में भारतवर्ष में विवाह का उद्देश्य जो होता है वो होता है कुल परंपराओं को चलाना। भारतीय विवाह का उद्देश्य है कुल परंपराओं को चलाना। ये भगवद गीता के पहले अध्याय में लिखा है, अर्जुन कहता है कुल परंपराएं कैसे चलेंगी, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोजेनी। भारतीय विवाह का उद्देश्य है कि हमारी कुल परंपराओं की रक्षा हो, हमारे पीछे पितरों के पीछे उनका कोई पिंडदान करने वाला है, ये उसको बोले परंपरा होगी तब करेगा ना, परंपराएं नहीं होते सब समाप्त हो जाएगा। ये पहले अध्याय गीता के अंदर अर्जुन का जो है वो तर्क है। इसलिए हमारे विवाह 56 साल तक, 56 साल बहुत समय अरसा है, आप में जो बैठे हैं इसमें 56 साल की उम्र के भी बहुत कम होंगे लोग, और इनके विवाह को 56 साल हो गए, तो 56 साल तक विवाह का साथ रहना ये भारत की संस्कृति का गौरव है। और समाज और जगहों पर ये विवाह इतने साल चलते नहीं, क्योंकि वो विवाह भोग प्रदान होते हैं, और उस विवाह के पीछे उद्देश्य होता है भोग, और भोग नहीं मिला तो विवाह टूट गया। तो हमारा विवाह कोई सुंदरता भोग ये हमारा उद्देश्य ही नहीं है। वो बूढ़े बुजुर्ग जब अपना बच्चा जवान होता था तो कहते थे हमारा कुल परंपराएं चलाने के लिए विवाह करना है, और जब विवाह के कन्या घर में लाते थे तो कहते थे लक्ष्मी घर में आई है, जो विवाह के लड़की आती थी उसको लक्ष्मी का स्वरूप करके घर के अंदर मान के लाते थे, और लाल कुमकुम की थाली में पानी रखते थे, और बहू के पांव उसके अंदर आते थे और वो पांव के निशान घर में आते थे। ये था पहले कि नहीं था? हाँ, अब तो लंबी ईरी वाली जूते घर में आते हैं, आप जानो आपका काम जाने, तो वो रंग वाला तो बातें चली गई सारी। हाँ, रंग वाले बातें अभी है क्या बच्चे लोग? कहीं कहीं है तो भाग्यशाली है, नहीं तो दूसरा जो इसका पाश्चात्य देशों का जो प्रभाव पड़ रहा है वो बड़ा भारी पड़ रहा है। तो जब लक्ष्मी करके किसी को लाए तो लक्ष्मी को तो सभी संभाल के रखते हैं कि नहीं रखते? लक्ष्मी के लिए तो सबके लिए सम्मान है, इसलिए उसको कहते थे कि लक्ष्मी है। पहले बहन खड़े होकर दरवाजे के ऊपर खड़ी होकर पूछती भाई से कहां गया था, क्या लाए हो, और उसका उत्तर देता था मैं विदेश गया था, प्रदेश गया था, कहीं गया था, लक्ष्मी लाया हूं साथ। जब पत्नी लाता था ये पूछती थी बहन पहले क्या लेके आए, ऐसे था पहले? किसी को याद है कि नहीं? जिनको याद है वही अभी तक चल रहे हैं, जिनको नहीं याद है उनका क्या होगा। हरे कृष्णा। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि पहले विवाह हमारे संस्कारों के आधार के ऊपर थे और हमारे वैदिक सनातन धर्म में विवाह संस्कार है। संस्कार का मतलब है पवित्र करना, किसको? रिश्ते को। पवित्र कौन किसको कर सकता है? पवित्र किसको कौन से कर सकता है? केवल भगवान किसी को पवित्र करता है। ओम विष्णु 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 कहने से सब कुछ पवित्र हो जाता है। तो पवित्र करना रिश्ते को पवित्र करते थे, इसलिए विवाह को संस्कार कहा गया है। जो 10 या 16 संस्कार जो हमारे हैं वैदिक सनातन धर्म के, उसमें विवाह संस्कार है। और मंत्र उच्चारण किए जाते हैं, देवताओं का आवाहन किया जाता है और बड़ा समाज बुलाया जाता है। काय के लिए? भोजन खिलाने के लिए? हाँ नहीं, आशीर्वाद देने के लिए। अपने मित्र बंधु बांधव रिश्तेदार सब क्यों बुलाते हैं? देवताओं को बुलाते हैं और हवन में आवाहन करके और निमंत्रण देके अपने समाज के भाई बंधुओं को बुलाते क्यों? सब प्रार्थना करें, आशीर्वाद दें कि ये जो विवाह होने जा रहा है, ये कन्या और वर आप उनका जीवन सफल हो, सुखमय हो, नया जीवन जो शुरू कर रहे हैं भक्तिमय हो, ये उसके पीछे उद्देश्य हुआ करता था। अब ये बात खत्म हो गई। अबे विवाह के अंदर सभी आएंगे, खाएंगे, जाएंगे, बस हो गया। पुराने जमाने में कि विवाह में पहले तो वो तो बहुत पुराने लोग थे, पहले भगवान को भोग लगता था। गणेश तो पहले विराजमान होता था लेकिन भगवान को अपने इष्ट को भोग लगता था। फिर जो जो जिसकी शादी होती थी उसको क्या कहते हैं? बिंदराज, क्या कहेंगे? बीन राजा को बहुत ऊपर आसन के ऊपर बिठा के उसके आगे चौकी रखते थे, उसके ऊपर पहले भोजन परसा जाता था और फिर समाज को मिलता था। आजकल की शादी में भूखा केवल बीनराज और उसका बाप होता है, बाकी सब दुनिया खा जाती है, बाकी सारी दुनिया खा जाती है, उसको मिलता ही नहीं। वो हम ठंडा है फिर गर्म करके आखिर में सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? जब से ये ऊंट वाला खाना शुरू हुआ है, बफेलो, बफेलो क्या बोलते हैं इसको? बफेलो भैंस, भैंस बफे, अच्छा बफेलो मैं समझा उसको। क्या थी? हम तो भैंसों को ऐसे खिलाते थे हमारे जमाने में। अरे हमारे जमाने ऐसे ग्रास देके वो जो हमारा संबंधी है उसके मुंह में ऐसे खिलाया करते थे, मुंह में ऐसे खिलाते थे तो एक दूसरे के मुंह का लिहाज भी रखते थे। एक दूसरे के मुंह का लिहाज रखते थे, एक दूसरे के मुंह की बात को रखते थे। जब से हरे कैसे ऊंट की तरह खाया और चल दिया तो सबको पीठ दिखा के बैठे हुए कि हमारे विवाह को हो क्या गया। ये इसलिए 56 साल का विवाह मनाने के लिए हमने आने को हां कर दी कि ये संस्कार हमारे क्यों खत्म होते जा रहे। अरे भाई बिजनेस के हिसाब से पार्टी करके दुनिया को खिलाना है तो खिलाओ, देना लेना है तो करो, लेकिन कम से कम संबंधियों को घर में बुला के आमने सामने बैठ के प्रेम से खिला लिया करो। इतना तो कम से कर लिया करो कि चार आदमी, इतनी बड़ी थाली हुआ करती, 10-10 आदमी बैठते थे साथ में, और जो साथ बैठ के खा सकते हैं वो साथ रह भी सकते हैं, साथ जी भी सकते हैं, साथ मर भी सकते हैं। जब से हमने साथ खाना छोड़ दिया तब से हमने साथ रहना छोड़ दिया और सब तब से हमारा सब कुछ बिगड़ गया। साथ खाने वाला साथ रह सकता है। प्रभुपाद जी कहते थे टू पांच एक फुट टूगेदर वी कैन लिव टूगेदर। जब सिकंदर भारत के ऊपर आक्रमण करके आया था तो आया था खैबर पास से, खैबर पास अफगानिस्तान के रास्ते से, तो इस तरफ पोरस का राज था, महाराज पोरस। तो सिकंदर ने अपने गुप्तचरों को भेजा कि सामने देखो तो उनकी सेना का क्या हाल है। तो गुप्तचर घूम के वापस आए, बोला महाराज 5-6 जगह आग जल रही थी। बोला 5-6 जगह आग क्यों जल रही थी? बोला एक दूसरे के एक का पकाया भोजन दूसरा नहीं खाता है, वो अलग पका के खाते हैं, वो अलग पका के खाते हैं, वो अलग पका के खाते हैं। सिकंदर ने कहा जो साथ में पका के खा नहीं सकते वो साथ लड़ भी नहीं सकते, इसलिए हम जीतेंगे, हमको इस बात का पूरा विश्वास है। बोला केवल एक संकेत से कि अगर साथ खा नहीं सकते तो साथ लड़ेंगे कैसे? तो इसका मतलब ये, इसमें बंटवारा हो गया, इसमें भाईचारा नहीं रह गया। तो बात कर रहे थे हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
कृष्णा
कृष्णा,
हरे हरे,
हरे
राम,
हरे राम,
राम
राम,
हरे
हरे।
तो बात कर रहे थे वो जो नगर का चौधरी था अथवा पेंच था या प्रेसिडेंट था, जो भी था, उसने सोचा कि ऐसा कुछ मैं व्यवस्था कर जाऊं कि मेरा बच्चा बाद में इस धार्मिक परंपराओं को चलाए। ये पिताजी के इच्छा और अभिलाषा थी, पिता और अभिलाषा से मैं चाहता हूं कि मैं जीते जी मेरा बच्चा अथवा कम से कम बाद में वो इस कार्य को चलाए। तो उसने एक वसीयत लिख के रखी थी, विल लिखा था। विल में क्या लिखा था वो तो उसको वो जाने, लिख के रख दी थी। समय आने के ऊपर चौधरी जी भगवान का भक्त था, समय आया, समय समय सबका आता है, चौधरी जी चल बसे। तो पीछे सब भी जो कार्य पूरा हुआ तो उनकी विल को पढ़ना शुरू किया। तो विल में लिखा था कि मेरी जो भी जायदाद है, जो मेरी जमीन जायदाद है, उसका आधा मेरे बेटे को देना, उसका चौथा हिस्सा मेरी पत्नी को देना, उसका पांचवा हिस्सा मेरे सेवक को देना जिसने सारी उम्र मेरी सेवा की है। ये विल में पहली लाइन थी। ऐसे लिखा था कि जो मेरे दुकान मकान है इसकी बात ऐसे लिख दी, पैसे की बात ऐसे लिखी। फिर उसके पास उस जमाने में माल हुआ करता था, लोगों के पास गाय भैंस ऊंट आदि थे, तो उसके पास ऊंट थे 19, उसने उसके लिए भी यही लिखा था कि आधा मेरे बेटे को देना, चौथा ऐसा मेरी पत्नी को, पांचवा ऐसा मेरे सेवक को। तो जायदाद जमीन तो बांट दी, ऊंट कैसे बांटे, अब 19 ऊंट का आधा कैसे करें, 9.5 ऊंट को आधा कैसे कटे, फिर चौथा ऐसा कैसे करें, पांचवा ऐसा कैसे करें। परेशानी हो गई, क्या करना चाहिए। तो विचार आया कि अपने गांव के पास दूसरा गांव है, एक महात्मा साधु रहते हैं, साधु को लेके आइए, शायद हमारी समस्या का समाधान कर दे। साधु को लेने गए, उस जमाने में आने का साधन भी ऊंट घोड़ा था, तो साधु अपने ऊंट के ऊपर चढ़ के आया। जब साधु आके पहुंचा गांव में तो कहा कि सेठ जी बहुत अच्छे हैं, हम आते थे, ये पंच बहुत अच्छे थे, सज्जन थे, सब कुशल मंगल हमारे कथा कीर्तन करते थे, अब भगवान की इच्छा से आप बोलिए कि मेरे लिए क्या सेवा है। बोला महाराज, आपको बुलाया इसलिए है कि उनका जो विल है, उनका जो वसीयत है, उसमें सब कुछ लिखा है, हमने बांट दिया, लेकिन एक समस्या है। बोला क्या समस्या। बोला 19 ऊंट को कैसे बांटे, आधा उसकी बेटे को देना है, चौथा हिस्सा उसकी पत्नी को देना है, पांचवा हिस्सा उसके सेवक को देना है। बोला ऐसे करो, 19 ऊंट ले आओ तुम्हारे, खड़ा करो, यहां खड़ा किया। बोला जिस ऊंट के ऊपर मैं चढ़ के आया हूं इसके साथ खड़ा कर दो, खड़ा कर दिया। बोला अभी इसका आधा करो, तो कितना हुआ, 19 उनके थे, एक महाराज का ऊंट कितने हुए, आधा कितना हुआ, दे दो बेटे को ले जाए। बोला अब चौथा हिस्सा इसकी पत्नी को दे दो, कितने हुए, दे दो। बोला पांचवा ऐसा इसके सेवक को दे, वो कितने हो गए, दे दो। बोला मेरा ऊंट मेरे को दो, मैं चढ़ के वापस जाऊं। अरे ये तो महाराज आपने बड़ा अच्छा किया। तब उस संत ने कहा, तुम्हारा पिताजी तुमको बेटा शिक्षा देने जा रहा था, शिक्षा ये देने जा रहा था, इस दुनिया में 19 ऊंट को जैसे बांटना मुश्किल है, इस दुनिया में सभी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, केवल जब एक भगवान जीवन में जोड़ोगे और वो भी जब कोई साधु आके देगा तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा, नहीं तो समाधान होना संभव नहीं। 19 ऊंट बांटना जिसमें मुश्किल है, ऐसे दुनिया की समस्याओं को सुलझाना मुश्किल है, केवल एक भगवान जोड़ना पड़ेगा जीवन में, और वो भी देगा साधु, तब जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा, और तब आपकी समझ। तब उसके बेटे को समझ में आया कि मेरे पिताजी वसीयत, केवल वसीयत नहीं लिख के गए थे, लेकिन मेरे लिए कुछ मर्यादा लिख के गए थे। तब से उसने अपनी परंपराओं की उस सेवा को वैसे ही करना शुरू किया जैसे बूढ़े बुजुर्ग किया करते थे। तो सीकर में हम गए थे तो युगल भाई के यहाँ सत्संग करने, इनके भाई साहब वहाँ ललित जी के विवाह की गांठ का था उत्सव, तो एक दिन के लिए आए वहाँ गणेश जी, और कहा कि सूरत में दो तीन दिन इन दिनों में प्रोग्राम रखना है। तो हमने कहा ये क्योंकि मर्यादाएं और कुल परंपराओं की रक्षा का काम है तो ये करना सबसे जरूरी है, तो निश्चित रूप से हम ये सेवा करेंगे। तो मैं बाहर गया हुआ, बाहर था रात 2:30 बजे ही, मैं मॉरिशस से उतरा था सीधा बॉम्बे और इधर आया हूँ, इसलिए कि हाथ जोड़ के आपको विनती करता हूँ कि ये सनातन धर्म की जो हमारी समस्याएं हैं इनका समाधान ढूंढो और अपनी परंपराएं हैं उसको अच्छी तरह से पकड़ के रखो, नहीं तो पाश्चात देश की जो सुनामी रूपी आंधी आ रही है ये हमारे सारे संस्कारों को धो डालेगी। और राजस्थान में आपके बड़े बुजुर्ग क्यों जाके बसे थे कभी उसके ऊपर, मेरे बड़े बुजुर्ग भी राजस्थान में बसे थे लेकिन बहुत दूर राजस्थान में चले गए थे, रेगिस्तान में चले गए थे, रेत के टीलों में जाके क्यों रुके थे? धर्म की रक्षा करने के लिए पानी कुएं से निकालते थे, साठ पुरुष बोलते थे पांच फुट का दो हाथ, साठ नीचे पानी निकालते थे जाके, लेकिन उधर जाके छुप के क्यों बैठे थे? धर्म की रक्षा के लिए। धर्म की रक्षा के लिए जब इधर मोहम्मदन शासन था तब दूर दूर जाके हमारे बुजुर्ग रहे थे, हमें मालूम है कितने अकाल आए हुए होंगे, पेड़ के तो छिलके खाए होंगे लेकिन घर का पशु कभी मार के खाया है ये हमारे इतिहास में नहीं लिखा है। अब देख लो बूढ़ी गाय होती है उसको तो घर का खिलाएगा खुद नहीं खाएगा, घर के अंदर पहली रोटी गाय के लिए बनती थी, ये हमारी संस्कार था, पहली रोटी मां बनाती थी तो गाय की रोटी हुआ करती थी कि गऊ को देंगे, तो ये हमारे संस्कार थे ये सब। तब हम उधर छुप के जाके बैठे थे उस वक्त में अपने धर्म की रक्षा के लिए। जब अब हमको धर्म को पालन करने का पूर्ण अधिकार है और हम धर्म पालन कर सकते तब क्यों नहीं कर रहे? और जब हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है तो जिसने दिया है उसको याद क्यों नहीं कर रहे? तो आज के इस सत्संग में हमारा विचार है आपको ये बताने का, पहले तो जैसे भारतीय संस्कृति का कभी भी कभी कोई कहेगा सनातन धर्म का शास्त्र कौन है, दुनिया एक ही शास्त्र को मानेगी तो भगवद गीता, एक ही शास्त्र के ऊपर अगर दुनिया सारी कहेगी कि भारतवर्ष के सनातन धर्म के मानने वालों का मुख्य शास्त्र मूल शास्त्र कौन है तो भगवद गीता, क्योंकि दुनिया सब इसको जानती है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि सिद्धांत के आधार के ऊपर सारे शास्त्रों का सार है गीता। सर्व उपनिषदो गावो दोगदा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधर भोक्ता दुग्धर गीता अमृतम महत। सर्व उपनिषदो गावो, अगर सारे उपनिषद सारे वेद गाय बन जाएं तो गाय के अंदर मुख्य क्या है? दूध, मूर्खों को मांस नजर आता है लेकिन दूध गाय का रतन है, तो सारे वेद रूपी गाय का दूध निकाला किसने निकाला? जो गाय को धोना जानता है। कितने लोगों को गाय धोने आती है आपको बेटा? हाँ, एक मेरी माँ वो भी 50 से ऊपर किया, उसने हाथ ऊपर किया, दूसरी का हाथ किसी और दूसरी ने धक्का देके ऊपर किया। ये सारे ही वो धो सकते हैं जो 50 की सीढ़ी से ऊपर पहुंचे हैं। पहले जो लड़की होती थी ना उसको संस्कृत में उस कहते हैं दोहितर, लड़की का नाम संस्कृत में है दोहितर, मतलब गाय को दोहने वाली, उसका नाम ही दोहितर है वेद में। तो गाय को दोहते थे पहले तो दूध निकालना आएगा, गाय होगी तब ना। अब तो एक सी फार काओ तो अभी भी पढ़ाते हैं स्कूल में, और एक बोर्ड के ऊपर लिखा बम्बई में सी फार लिखा काओ और काओ का फोटो लगा था। एक लड़का कहता है सर सर इसमें थैलियां कहां होती है मिल्क की? उसने समझा इसके गले में थैलियां बंधी होगी, उसमें से टांग के फोड़ के लाते हैं। इसको ये मालूम नहीं कि गुड़ गाय से दूध निकलता है, मालूम नहीं है बच्चों को? बम्बे को मालूम, बच्चों बच्चों को मालूम नहीं? बम्बे में गाय घर में नहीं रख सकते, कुत्ते दो दो रख सकते हो। देखो ना हमारी संस्कृति का हाल, भगवान का नाम गोपाल है और उसको गार्ड कहते हैं, गार्ड कहता है, गोपाल कहता है गाय को रखो, और दुनिया कहते नहीं हम गार्ड डॉग को रखेंगे। तो ये गार्ड कॉन्शियस सिविलाइजेशन तो नहीं हुई, ये डॉग कॉन्शियस सिविलाइजेशन। भगवत भावना का समाप्त हो गया और कुत्ते का क्या विशेष काम है? हर एक को काटना। और दुनिया में केवल काटा काटी का काम हो रहा है, वही कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है। एक दूसरे का गर्दन ही काटना है और कोई काम नहीं करना है। काम ही कुत्ते का काटना है और क्या करेगा बेचारा। बी अवेयर ऑफ द डॉग। पहले किसी ने बोला साधु के निवास में और सेठ की कोठी में अंतर क्या होता है? बोला साधु के निवास पे लिखता है स्वागतम आइए, और बड़ी कोठी पे लिखता है कुत्ते से सावधान। एक जगह स्वागत है और एक जगह लिखा है कुत्ते से सावधान। फिर समझदार आदमी लिखा कौन से वाले से। इसको तो संभाल लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। तो हम बात कर रहे थे भगवद गीता विश्व भर में मान्य शास्त्र हमारा, उसमें बात ये कर रहे थे कि दूध गाय का कौन निकाल सकता है? तो गोपाल नंदन। सारे शास्त्रों के रूपी गाय का दूध किसने निकाला? बोला गोपाल नंदन ने। गौपाल, गौ को पालन करने वाला कृष्ण जब गाय को दूधता था तो उसके लिए किसी मटके की जरूरत नहीं, आए से सीधा मुंह के अंदर डायरेक्ट सीधा जाके ऐसे पीता था, दमा कुछ बीच में जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पी लेता था। और तो वो जो गाय का दूध निकाल सकता था उस ग्वाल ग्वालों के राजा नंद बाबा के पुत्र गोपाल ने सारे शास्त्रों का दूध निकाला है। तो बोला है बुलाया किसको? गाय दूध किसके लिए देती है? हरे कृष्णा। गाय दूध किसके लिए देती है? दूध वाले को बेचने के लिए। गाय दूध किसके लिए देती है? अपने बछड़े के लिए। जिसके घर में गाय होगी उसको मालूम है गाय दूध नहीं देगी जब तक उसका बछड़ा उसके स्तन में मुंह डालेगा, तब गाय का दूध नीचे उतरेगा, फिर बछड़े को हटा के हम दूध निकालते हैं, उसको धोखा देते हैं कि तेरा बछड़ा पी रहा है। लेकिन उसको पहले बछड़ा नहीं ले जाओगे तो दूध गाय नहीं देगी। बछड़ा जाके पहले स्तन में मुंह डालेगा तभी दूध नीचे उतरेगा गाय का। तो भगवान ने शास्त्र रूपी दूध पिलाना था तो कोई बछड़ा होगा तब ना। पार्थो वत्स, पार्थ का मतलब अर्जुन और वत्स का मतलब बछड़ा। बछड़े से गाय कितना प्रेम करती है? गाय घास में अगर गाय का अपना ही पेशाब आ जाए घास गाय नहीं खाएगी। घास गाय के अपने घास के अंदर उसका ही गोबर और अगर पेशाब होगा तो नहीं खाएगी, गाय हाथ देखेगी नहीं। लेकिन अपने नए जात बच्चे को जो मल मूत्र से सना हुआ है उसको जीभ से चाट के साफ करती है, करती है कि नहीं करती? इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। वत्स का मतलब बछड़ा। और पहले बछड़ा गाय कभी जंगल में देती थी तो गाय को घर लाने के लिए क्या करते थे ग्वाले? बछड़े को गोद में उठाते थे, गाय अपने पीछे तो अपने आप पीछे दौड़ती आती थी। गाय को कहीं ले जाना होगा, बछड़े को आप ले जाओ, गाय अपने आप पीछे आएगी। गाय को ले जाने का यही रास्ता है, तरीका है। तो जो भगवान का भक्त जहां जाता है भगवान उसके पीछे ऐसे जाता है जैसे गाय बछड़े के पीछे जाती है, जैसे गाय पछड़े के पीछे जाती है ऐसे भगवान अपने भक्त के पीछे जाता है। इसलिए भगवान का नाम है भक्त वत्सल। वो अपने बच्चे में अपने भक्त में कोई बुराई गंध नहीं देखता। कोई माँ अपने बच्चे का मलमूत्र साफ करते हुए कभी नाक के ऊपर कपड़ा रखते हुए देखा है आपने? नहीं देखा है ना। क्यों? इस दुनिया में भगवान का छोटा नमूना कोई है तो माँ है, सुहृद, उसको बोलते हैं सुहृद, भगवान सुहृद है। अपने दुख की परवाह न करके बच्चे को सुखी देखना चाहती, रात जागेगी बच्चे को सुलाने के लिए, मलमूत्र साफ करते हुए किसी मां को आज तक नाक के ऊपर कपड़ा रखते हुए नहीं देखा गया होगा, क्यों? उसके हृदय में स्नेह है, प्रेम है, वही पिघल के दूध बन के आता है, वही दूध बनता है, उसका प्रेम दूध के रूप में आता है, वही बच्चे को दूध पिलाती है। और तब उन माओं को अधिकार हुआ करता था, कहती थी बेटा मेरे दूध की लाज रखना, और बेटे भी कहते थे मां तुम्हारे दूध का कर्ज चुकाऊंगा। एक बच्चा ऐसे ही कहने लगा मां मैं तेरे दूध का कर्ज चुकाऊं, बोला बेटा तू अब दूध वाले का कर्ज चुका, बाद में दूध की बात, बाद में तेरे दूध को देखेंगे, अभी दूध वाले के कर्ज के अंदर फंसे हुए, गाय तो है नहीं घर में। लिखा था कुंती माता ने कृष्ण के हाथ चिट्ठी भेजी थी अर्जुन और भीम को कहना क्षत्रानी जिस दिन के लिए बच्चे को जन्म देती है और दूध पिलाती है वो दिन आ गए हैं। ये मां ने लिखी थी चिट्ठी कुंती ने और कृष्ण के साथ भेजी थी जब वो विराट नगर में रुके हुए थे पांडव, और भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन गए थे हस्तिनापुर में। तब कुंती ने कहा था आज अर्जुन और भीम को कहना कि क्षत्राणी जिस दिन के लिए बच्चों को जन्म देती है और दूध पिलाती है वो दिन आ गया है, सीने के ऊपर घा खा के आना तो मेरे चरण छूने आना, और पीठ पे घा खाओ तो हमको मुंह मत दिखाना। ये मां आशीर्वाद देती थी बच्चों को, इसीलिए हर समय जब अर्जुन थोड़ा सा हिचकिचाता है युद्ध करने से तब कृष्ण कहते हैं पार्थ तो मेरी बात नहीं मानता, तेरी मां की बात भी नहीं मानेगा क्या? पार्थ तेरी मां का नाम है ना, पार्थ को या एकदम याद दिलाता कि तेरी माता ने लिखा था तो मैं भूल गया क्या? तो ये भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण सारे शास्त्रों का सार, और भाग्य देखो अर्जुन का, बहुत कम गाय दो बच्चे साथ देते हैं, देखिए कभी दो बच्चे गाय के साथ, हमने देखे नहीं है, कुत्तू को देखिए पांच सात बच्चे होते, गाय को एक ही बच्चा देखा गया, दो बच्चे किसी को याद है कभी गाय ने दिए हो? नहीं आता है हमको याद। एक ही बच्चे को प्रेम से दूध पिलाती है गाय, एक ही बच्चे को दूध पिलाती है। ऐसे भगवान ने एक ही अर्जुन को सामने बिठा के पूरी भगवत गीता सिखाई, कितना भाग्यशाली हो गया अर्जुन, जरा विचार करके देखो। यहां तो कहते हमारे सत्संग में कितने आदमी आपके वहां आएंगे तो हमारे महाराज आएंगे, नहीं तो नहीं आ सकते, गोली मारो तेरे महाराज को। एक रेत भक्त के लिए भगवान ने 18,000 गीता सुनाई है, तुम आदमी बता करके उनको सुनाना चाहता है क्या? तुम अपनी हिमायत दिखाना चाहते हो? ये सत्संग करने वालों का ये ढंग है, कितने लोग आप बुलाओगे? ये कोई सत्संग करने आ रहे हो तुम? एक आदमी के लिए भगवान ने भगवद गीता सुनाई है, एक आदमी को। भगवान तो कह सकता था मैं पूरी दुनिया का मालिक हूं, सब आके बैठ के सुनो, बोला नहीं अधिकारी नहीं हो, एक ठीक है, पांच पांडव हैं तो बहुत है, मैं उनका साथी हूं, करोड़ करोड़ नहीं चाहिए मुझे, धर्म के ऊपर चलने वाले पांच मेरे लिए काफी। और भगवान ने पांच पांडवों का तो साथ दिया, करोड़ करोड़ों की तरफ नहीं गए। तो एक व्यक्ति को बैठ के भगवान भगवद गीता सुना रहा, एक कृष्ण को, अर्जुन को, एक को सामने आमने, कितना भाग्यशाली अर्जुन होगा। और जिसको भगवान ने अपने मुख से कहा भक्तो सी में सखा चेती, तू मेरे भक्त हो, हम तो कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं, भगवान हमको जानता भी नहीं, हम कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं, ढंडोरा पीटते हैं। और यहां तो भगवान कह रहा है कि अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, कितनी बड़ी बात है, ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता है। शिष्य गुरु की बैठ के बखान करे कोई बड़ी बात नहीं है, गुरु बैठ के कहे कि ये मेरा शिष्य योग्य है, ये बहुत बड़ी बात है। शिष्य की तो मर्यादा है, गुरु की करना है, उसकी तो प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। गुरु बैठ के कहे कि मेरा शिष्य कितना महान है, ये बहुत बड़ी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं भरत ऋषभ हे भरतवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, उसकी महानता गा के कहते तुम मेरे भक्त हो, भगवद गीता की शिक्षा थोड़ी सी मुश्किल है। मैं एक और आज थोड़ी देर के लिए संक्षेप में एक और भगवान के अवतार में, भगवान ने एक ही भक्त को बिठाकर और 10 दिन, भगवद गीता तो 1 घंटे 20 मिनट में भगवान ने बता दी, 18 दिन, लेकिन 10 दिन, 10 दिन एक व्यक्ति को बैठकर भगवान ने, साक्षात भगवान ने। और भगवद गीता जब श्री कृष्ण जी, तो श्री कृष्ण अकेले थे, श्री कृष्ण कभी अकेले नहीं होते हैं, अपने भक्त के संग होते हैं, इसलिए कृष्ण पार्थ के संग थे, इसलिए भगवान का नाम पार्थ सारथी है। लेकिन 5 सारथी भगवान की पूजा तो इतनी ज्यादा नहीं होती है, ज्यादा कृष्ण की पूजा किस रूप में होती है? राधा कृष्ण, राधा कृष्ण के रूप में होती है। तो राधा तो वहां गीता के उपदेश देने के समय नहीं थी वहां, लेकिन आज राधा और कृष्ण दोनों मिलकर एक हो गए हैं, राधा और कृष्ण दोनों मिलकर जुगल हो गए हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा एक ही दी है, सिर्फ एक शिक्षा दी है भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने, भाव मद भक्त मेरे भक्त बनो बस, और कोई शिक्षा नहीं, मेरे भक्त बनो, ये भगवान का आदेश है सीधा, आप मेरे भक्त बनो, भाव मद भक्त हो। तो कोई कह सकता है कि ज्ञान है, कर्म है, ज्ञान है, ध्यान है, हाँ है, है। जैसे स्कूल बच्चा पढ़ने जाता है, आप लोग स्कूल पढ़ने जो गए हैं ना, तो पहले प्राइमरी एजुकेशन में जाते हो ना, फिर मैट्रिक करते हो, फिर 12वीं तक कॉलेज करेंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे। अगर आपने पीएचडी कर ली तो जब आप अपनी डिग्री बाहर लिखोगे तो क्या लिखोगे? पीएचडी, यही लिखोगे ना, नाम अपना और फिर पीएचडी लिखोगे ना, ये तो नहीं लिखोगे मैंने प्राइमरी यहां से की, मैंने यहां से मैट्रिक की, ऐसे लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं ना, पीएचडी ही लिखते हैं ना। ऐसे ही भगवद गीता को देखेंगे तो 3rd अध्याय में कर्म योग है प्राइमरी, 4th अध्याय में ज्ञान योग है सेकेंडरी, 6th अध्याय में ध्यान योग है इंटर, और 12वें अध्याय में भक्ति योग है पीएचडी। अब जो बाहर लिखेगा वो तो वही लिखेगा जो पीएचडी किया, नहीं ऐसे समझ गया मैं प्राइमरी करके आया हूं। तो इसीलिए जो मुख्य डिग्री है वही काम आएगी ना। तो भक्त ही बनाना भगवान श्री कृष्ण का भक्ति भागवत गीता का संदेश है कि मेरे भक्त बनो। कैसे बनो? बोला मेरे नमस्कार मुझे कर लो, मेरी पूजा कर लो, माम नमस्कारो मद याजी मद भक्त मन मना, मेरे में मन लगाओ। भगवान ने कहा मेरे भक्त बनो, ये भगवान की शिक्षा है। लेकिन भगवान ने देखा मेरा भक्त तो कोई नहीं बन रहा है, सब ये कलयुग महाराज के भक्त बढ़ते जा रहे हैं, मेरे भक्त कम होते जा रहे हैं, बड़ी समस्या है। इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा भक्त किसके है? कलयुग के, कलयुग के भक्त, कलयुग के मंदिर ज्यादा है। कलयुग का मंदिर कौन सा होता है? परमठ साप, परमठ साप शराब का दुकान कलयुग का एक बड़ा मंदिर है। पुराने लोगों ने लिखा है कविता में, कहे गए सिया से राम जी ऐसा कलयुग आएगा, मंदिर खाली मिलेगा मय खाने भरे हुए मिलेंगे, मंदिर खाली मिलेगा मय खाने भरे हुए मिलेंगे। मंदिर में कोई बूढ़ी और माता जी होती है, वो बैठी होती है वहां राम 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 करती है, बाकी कोई नहीं जाता है, और सारे जवान कलयुग के मंदिर के अंदर लाइन लगा के खड़े होते हैं। इतने तो गणेश के मंदिर के ऊपर दर्शन पे लाइन जितनी नहीं होती है, जितनी कलयुग के मंदिर के अंदर लोगों की लाइन लगती है। तो कलयुग का मंदिर दूसरा कौन सा है? हाँ, कौन सा? बोलिए बोलिए। सिनेमा हॉल में बड़ी लाइन लगती है कलयुग का, उसमें कलयुग की लीला चलती, कलयुग का रासलीला का स्थल सिनेमा हॉल है, कलयुग वहां रासलीला करता है, भगवान तो बंसीवट में करते हैं, कलयुग की रासलीला। और उस रासलीला ने इतना कमाल किया, सैनी माँ से उठ के हमारे घर के अंदर टीवी में आकर बैठ गई और बीवी भूल गया और टीवी के ऊपर सब लोग बैठे हैं। बीवी याद नहीं है, टीवी के ऊपर टाइम ज्यादा है, बीवी को टाइम कम है। ये बात आप सच मान लें झूठ मान लें बोलिए जरा, हाँ टीवी को ज्यादा टाइम है बीवी को कम टाइम है, ये झूठ है कि सच है? इस तरफ से आवाज आ रहा है सुन लीजिए। क्योंकि कलयुग ने अपना प्रभाव बहुत ज्यादा भारी जमा दिया है, 3-4 घंटे टीवी पे खबरें तो देखेगा और कहेगी घरवाली गरम गरम अभी अभी फलका बनाया है, चलो सीधी सीरियल चल रहा है, ऐसे सीधा हो जाएगा सीरियल चला, वो हाथ चल गया उसका रोटी पकाते हुए और वो उसी को देखने इतना मस्त है, जब तक उसकी दिल नहीं जलेगी तब तक रोटी नहीं खाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक भगवद गीता में श्लोक है, यज्ञ शिष्यै शनै संतो मुच्यन्ते सर्वक्लबशैः ये पचन्ति आत्म कारणात् अघम पापम क्या है भुञ्जते ते अघम पापा। ये तीसरे अध्याय का श्लोक है, प्राइमरी का श्लोक है, प्राइमरी का श्लोक है तीसरे अध्याय का। यज्ञ शिष्यै संतो, यज्ञ का मतलब भगवान विष्णु को भोग अर्पण करके अश्नति मतलब खाते हैं, जो लोग भोजन बनाते हैं भगवान विष्णु को अर्पण करने के लिए, राम जी को अर्पण करने के लिए, गोपाल को अर्पण करने के लिए, उसको बोलते हैं यज्ञ। और अश्न का मतलब खाते हैं फिर, उनको बोलते हैं संत, वो संत हैं, चाहे घर में गृहस्थी हो वो संत है। जो भगवान को भोग लगाकर विष्णु को नारायण को गोविंद राम को भोजन घर में खाता है वो संत है, चाहे घर में गृहस्थी हो। उसको लाभ क्या होता है? यज्ञ शिष्ट ही संतो मुच्यते सर्वोत्तम पशही, सारे कठिनाइयों से मुक्त हो जाएगा, सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। ये तो पहली लाइन बोल दी, संस्कृत में दूसरी लाइन बहुत भारी होती है। अब दूसरी लाइन में क्या लिखा है? ये पचन्ति आत्म कारणात्, केवल अपने खाने के लिए जो बनाते हैं, जो अपने खाने के लिए केवल बनाते हैं, भुंजन्ति अघम पापा, अघम का मतलब भी पाप है और पाप का मतलब तो पाप है, घिनौना पाप खा रहे हैं जो केवल अपने लिए पकाते। तो लोगों ने कहा कि ये दूसरा जो श्लोक का भाग है ना भगवद गीता में, इसका मतलब हम अपने लिए पकाएंगे तो पाप खाएंगे, इसलिए हम अपने लिए नहीं पकाते हैं, होटल में जाके खाएंगे। और इसलिए तीसरा कलयुग का चेला ये सारी होटल है, जो वहां जाके खाता है समझ लो पक्का कलयुग का परमूर चेला है। अरे माँ जितने प्रेम से बच्चे के लिए पकाती है, उसके मांदर भोजन में माँ का स्नेह जाता है, पत्नी बनाती है तो उसका प्रेम उसमें आता है, वो जो रसोई बनाने वाला रसोईया जो आपके लिए भोजन बनाएगा क्या उसमें प्रेम डालेगा, स्नेह डालेगा, पसीना डालेगा? क्या बात है, तो पसीना डाले
वो कह रहा था दिल डाले,
दिल तो सेठ डालेगा, वो चाहता है कम ग्राहक आए तो अच्छा है, ज्यादा पकाना पड़ता है अंदर पसीने। दिल तो दिल खाने के इतने भारी हो गए हैं, कितने की थाली है यहाँ सूरत में तो जमना ही है, यहाँ तो मरना तो है नहीं, तो जमने वाली सबसे महंगी थाली कितने की सूरत की? हाँ क्या कमाल है, 1000 रुपए की, आदमी 1000 रुपए का क्या खाएगा बोलो?
हाँ
एक ये 1.25 रुपये में मिलेगा, 1.25 रुपये में एक तंदूरी रोटी, 7 रुपए की चीज 1000 रुपए में खाते हैं, क्या बात है। माता जी ने कहाँ ढूंढ के तंदूरी रोटी को निकाला, तंदूरी تنگ دوری مطلب سب سے دوری، گھر والوں سے بھی دوری، سب سے دوری، کسی سے تنگ دوری، اور ہماری ہے مجبوری کہ 1000 روپیہ دے کے کھائیں گے. یہ کلجگ کا تیسرا مندر ہے، اور وشیش روپ سے وہاں بھی لوگ مردے کھانا پسند کرتے ہیں، مرے ہوئے پشو. وہ تو کلجگ کا ہول سیل کا گراہک ہے. یہ کلجگ کے مندر بڑھ گئے. بھگوان شری کرشن نے کہا کہ میں تو سکھا کے آیا، بھگوت گیتا کہہ کے آیا کہ بھکت بنو بھکت بنو. ہمارے بھکتوں کی سنکھیا کم ہو رہی ہے، کلجگ کا بول بالا ہو رہا ہے. ہمارے ایک بھکت پریشت نے کلجگ کو تو بہت بڑا دمن کر کے رکھا تھا، اس کو 4 جگہیں دی تھی کہ یہاں تم جا کے رہو. تب تو کلجگ کے علم کو جگہ ملی نہیں پریشت کے راج میں. پریشت کا راج کوئی بہت پرانا نہیں ہے، 5000 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، 4000 اور 800 سال کی مشکل سے ہوئے ہیں. تو 4 جگہیں کلجگ کو رہنے کو دی تھی. پشو ہتیا ماس آہار ہوتا ہے، جہاں نشہ اور شراب پیا جاتا ہے، جہاں پر استری پر پرش وواہ سے باہر ویبچار کرتے ہیں، اور جہاں جوا ہوتا ہے. کلجگ تم جا کے وہاں رہو. تب کلجگ کو یہ 4 جگہیں نہیں ملی، اور پریشد گیا تو کلجگ نے سب جگہوں پہ اپنا قبضہ جمع رکھا ہے. یہ 4 جگہیں اب سرکاری طرح سے طرح سے چلتی ہیں، ساری سٹا بازار کیسینو سرکار کی طرف سے چل رہے ہیں. یہ کلجگ کا بہت بڑا، یہ تو کلجگ کا اس کو کہتے ہیں 1008 کنڈی یگیہ والا استھان ہے، جہاں بہت سارے یگیہ میں آہوتی ڈالنے آتے ہیں. یجمان وہاں بہت سب سے زیادہ ہوتے ہیں. میں سچ بول رہا ہوں، ناراض مت ہونا، بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہے ستیہ. وہ دوسری بات ہے کہ ہم ستیہ سمجھ سکتے ہیں. یہ دھرتراشٹر نے کہا تھا ستیہ جانامی، جانتا ہوں ستیہ کو پر کرنے کی اچھا نہیں ہے. اور غلط کیا ہے جانتا ہوں لیکن چھوڑنے کی اچھا نہیں ہے. یہ لیکن صاف کہا تھا. اس دنیا میں ہماری سمسیا کیا ہے آج کل؟ ہماری اس دنیا میں اس وقت سمسیا یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں سچ کیا ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ غلط کیا ہے لیکن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہی ہمارے سب سے زیادہ مانسک تناؤ کا کارن ہے. یہی اس وقت جو دنیا سب سے زیادہ بہت بڑی اسٹریس سے گزر رہی ہے، اس کا ایک ہی کارن ہے، سچ کو جانتے ہوئے اس کے اوپر چلنے کی ہمت نہیں ہے، اور جھوٹ کو جانتے ہوئے اس کو چھوڑنے کی ہمارے میں آتم وشواس نہیں ہے. اور یہ ستسنگ کیول آپ کو آتم وشواس دلانے کے لیے ہے کہ غلط کو چھوڑنا ہے اور اچھے کو اٹھانا ہے، کیونکہ ستیہ میں ایک وجہ سے ستیہ کی بھی وجہ ہوتی. جھوٹ ہمیشہ ناش ہونے والا ہے، جھوٹ سدا رہنے والا نہیں. تو اس رادھا کرشن کے یگل روپ میں بھگوان شری کرشن نے آنے کا سنکلپ کیا کہ میں نے کہا ہے مجھے بھکت بنانے ہیں، اور مجھے میں نے کہہ کے آیا ہوں بھگوت گیتا میں کہ میرے بھکت بنو، لیکن بھکت بنانا ہے مجھے تو میں بھکت بن کے جاؤں. بھائی جو کام سکھانا ہے وہی کر کے آنا پڑے گا نا، تو میں آج بھکت بن کے جاتا ہوں. اب بھگوان بھکت بنے، بھکت بنے گا تو کیا دے گا؟ بھکتی دے گا. تو بھگوان کے پاس تو بھکتی نہیں ہوتی ہے، بھکتی تو بھکت کے پاس ہوتی ہے. بھگوان کے پاس بھکتی نہیں ہے، بھکتی بھکت کے پاس ہوتی. تو بھگوان کو جب بھکتی دینی ہے تو اب ڈھونڈ رہا ہے کون سے بھکت کو اپنے ساتھ لے جاؤں جو بھکتی دے. اب بھگوان نے کہا میں اگر کسی بھکت کو ساتھ لے جاؤں تو کم سے کم بھکتی پورن تو ہونی چاہیے نا، پریپورن بھکتی ہونی چاہیے. بھگوان اوم پورنمد پورنمدم پورنات پورنمدچیتے پورنسیہ پورنمادائے پورنمیوادشیشیتے، یہ تو وید کہتا ہے بھگوان پورن ہے. اب بھگوان بھکتی بھی دے کے دینے کے لیے آئے تو پورن چاہیے نا، تو بھکت بھی پورن چاہیے نا، 100% سالڈ بھکت چاہیے. تو بھگوان نے ڈھونڈا، ایک ہی بھکت ملا جو 100% بھکتی سے پریپورن تھا، نپن تھا بھکتی میں، اور وہ رادھیکا جی ملی. رادھا بھکتی نپن ہے وہ بھگوان. بھکت کس کو کہتے ہیں؟ بھکت کس کو کہتے ہیں؟ جو پریم اور سیوا سے بھگوان کو بس میں کر لے. بھکت کی پریبھاشا یہ ہے، پریم اور سیوا سے جو بھگوان کو بس میں کر لے اس کو بھکت بولتے. اہم بھکت پرادھین ہوں, بھگوان کہتے ہیں میں بھکت کے آدھین ہوں, میں بھکت کے پاس بک جاتا ہوں. جیسے وہ مجھے بولتا ہے ارجن کے پاس بکا ہوا ہے کہ نہیں, کرشن دیکھو ارجن کو اوپر بٹھا دیا ہے, اوپر گدی پہ خود نیچے بیٹھا ہے, خود گھوڑے ہانک رہا ہے, سارتھی ڈرائیور بن کے بیٹھا ہے, ارجن کو اوپر بٹھا ہے, یہ بکا ہوا ہے کہ نہیں, بھکت کے پاس بکا ہے کہ نہیں. گھوڑے ہانکنا بھگوان کا کام نہیں ہے, دنیا چلانے والا آج گھوڑے چلا رہے بھکت کے, اسی کو بولتے ہیں کہ بھکت کے ہاتھوں میں بک جاتا ہوں. پھر بھکت مجھے کہتے نیچے بیٹھو تو میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں. تو بھکت کی پریبھاشا یہ ہے کہ جو پریم اور سیوا سے بھگوان کو پرسن کرے. اور بھگوان کس کے بس میں ہے؟ رادھا. بھگوان رادھا کے بس میں ہے, اس لیے ہرے کرشنا منتر میں یہ ہرے شبد جو ہے نا, یہ رادھا رانی کو پرارتھنا ہے. ہرے کا مطلب ہری کو جو پرسن کر کے ہری کو بس میں کرے اس کو ہرے بولتے ہیں. ہرے شبد جو ہرے کرشنا منتر میں ہے یہ رادھا رانی کو سمبودھن ہے. اہلادین بھگوان کی ہلادینی شکتی کو سمبودھن ہے. اگر رام بھکت ہے تو یہی شکتی سیتا ہے, اور اگر نارائن بھکت ہے تو یہی شکتی لکشمی ہے. اس لیے تینوں نام لے کے دکھائیے, سیتا رام, لکشمی نارائن, رادھا شکتی پہلے آتی ہے. آپ کسی دیوتا کا نام لیں گے تو شکتی پہلے نہیں آئے گی, پرایہ نہیں آئے گی. شیو پہلے آ جائے, پاروتی بعد میں آ گئی. ہاں ٹھیک ہے, یہ بھی چلے گا, وہ بھی بھگوان کی شکتی ہے لیکن بہارنگ شکتی ہے. وہ انترنگ شکتی ہے, وہ بہارنگ شکتی ہے. اس کے اوپر چرچا کبھی کرنی ہے تو اس کے اوپر کریں گے, آپ نے ٹھیک کہا. لیکن پرایہ شکتی کو سنمان دے کے آگے رکھا جاتا ہے, بہارنگ ہو یا انترنگ ہو. ایک ایسا نام بھی ہے جس میں کرشن کا نام پہلے آتا ہے, رادھا کا نام بعد میں آتا ہے, ایک ہی نام ایسا ہے, میں پڑھا پرسوں پڑھا تھا, بتائیں گے کبھی. تو رادھا بھکتی نیپون ہے, اس کو اپنے اس کو آگے کر دیا بھگوان شری کرشن نے, اپنے میں سما لیا. رادھا کرشن کی ہی شکتی ہے, اس میں سما گئی تو باہر سے رادھا دکھنے لگی, اندر سے کرشن ہے. تو رادھا کا رنگ کیسا ہے؟ گورا. کرشن کا رنگ کیسا ہے؟ سانولا. سانولا کرشن گوری رادھا کو اوپر سے ڈھک لیا, کیونکہ دینا تو بھکتی تھا, بھکتی رادھا کے پاس ہے اور دینا کرشن چاہتا ہے. دینے والا اندر بیٹھا ہے اور جو دینا ہے وہ باہر رکھا ہے. تو اس لیے بھگوان کا نام ہو گیا کرشن کا, جب رادھا کو سنگ لے آئے تو نام ہو گیا گورنگا. کیا نام ہو؟ گورنگا. اس کا رنگ تھا گورا. تو گورنگا مہاپربھو 515 پہلے 1486 پریاگ راج, گنگا جمنا اور سرسوتی کا جہاں سنگم ہے وہاں ایکانت کا ایک استھان ہے, دس اشومیدھ گھاٹ, جہاں دس اشومیدھ یگیہ ہوئے تھے. وہاں ایک ہی ویکتی کو سامنے بٹھایا اور 10 دن بیٹھ کر بھکتی کے رس کا اپدیش دیا, اور وہ ویکتی بھی کوئی سادھارن ویکتی نہیں تھا. اس وقت میں بنگال کے راجا کا منتری تھا, اور اس کو کیا اپدیش دیا ہے اس کو ہم چرچا کل صبح کریں گے. لیکن 10 دن ایک ہی ویکتی کو بھگوان نے اپدیش دیا ہے, کیونکہ ان کا اچھا تھا کہ بھکت بننے چاہیے. انہوں نے شاستر ہی لکھا, اس اسٹوڈنٹ نے, بھکتی رس امرت سندھو, بھکتی کے امر رس کا سمندر اس کا نام ہے. اور جنہوں نے یہ لکھا, جیسے ارجن کو چنا تھا شری کرشن نے گیتا دینے کے لیے, ایسے گورنگا مہاپربھو نے چنا روپ گوسوامی کو, روپ اپنا جس کو روپ دے دیا, اپنی شکتی کا سنچار کر لیا, और ये भक्ति के शास्त्र का संसार में प्रचार हो ये कार्य किया। वह क्या शिक्षा देते हैं? पहली लाइन आज सिर्फ एक श्लोक पहला पढ़ते हैं, फिर आगे दो दिन अपने पास है, चार टाइम और करेंगे इसके ऊपर सत्संग। एक श्लोक सिर्फ आप इसका ध्यान दीजिए, भगवान क्या कह रहे हैं। दूसरा, हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा।
जब मैं चुप करूं तब आप हरे कृष्णा बोलना, जब मैं बोलूं तब आप शांत, जब आप बोलो मैं, जब मैं शांत तब आप बोलो, नहीं तो अपना संबंध ठीक नहीं है। ऐसे लिखा है भगवद गीता में, बोधयंत परस्परम, एक बोल के समाप्त करता है दूसरा बोलना शुरू करता है। तो जब मैं बोल के समाप्त करूं तो आप बोलना शुरू करो, ऐसे चुप करके नहीं बैठो, बोलिए
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
ऐसे करने से लाभ क्या होगा? आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए ये नहीं सोचेगा कि 10 बज गए हैं, और ये भी नहीं सोचेगा कि भूख लगी है। दोनों बातें भूल जाओगे अगर भगवान का नाम लेते रहोगे, नहीं तो ये दो भूत हैं जो एकदम आपके ऊपर आक्रमण करके चला आएंगे। आप लिखिए क्या लिखा, ऐते ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गणा 84 लक्ष योनि करे भ्रमण। पहली शिक्षा ये देते हैं कि इस ब्रह्मांड में, ये एक ब्रह्मांड नहीं ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, और इसमें 84 लाख जोनियों में असंख्य जीव भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करने में एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं। 84 लाख तो केवल जोनियां हैं और जीव असंख्य हैं, तो कितने छोटे हैं। तब जीव का साइज बताते हैं। ये साइज इसलिए आपको बताते हैं, आप अपने आप को कभी बड़ा मत समझना, अपनी साइज को सुन लो कितनी आपकी साइज है। केशाग्र सतेक भाग पुनः शतांश करी तार सम सूक्ष्म जीवेर स्वरूप विचारी। केश अगर, बाल की आगे की चोटी, एक बाल की चोटी, सतेक भाग उसके 100 टुकड़े करो, पुनः शतांश करी उसके एक टुकड़ा जो उसके 100 टुकड़े और करो, तार सम उसके बराबर सूक्ष्म छोटा सा जीवेर स्वरूप विचारी, इतना छोटा जीव है हाथी में जो आत्मा है वो भी एक बाल के अगर भाग के 1000 टुकड़े से भी छोटा है, 10,000 से भी छोटा है, और एक चुंटी में भी उतना ही बड़ा आत्मा है। हाथी में भी आत्मा उतना ही बड़ा है जितना चुंटी में है। हम आज सुबह कल कई बात कर रहे थे, भगवान विष्णु के शरीर में जब रोम कूपों से एक एक ब्रह्मांड बाहर निकलता है, उस ब्रह्मांड में असंख्य जीव होते हैं, तो किसी ने बोला ऐसे कैसे होगा? मैंने बोला आपको पसीना निकलता है? हाँ निकलता है। एक पसीने के ड्राप को लेबोरेटरी में भोजो कि उसमें कितने जीव है जाके देखना, एक पसीने की एक ड्राप में कितने लिविंग एंटिटीज होंगी, कुछ संख्या का गणना है?
पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव है उतने जीव हमारे मुंह में,
जितने ब्रह्मांड में जीव है उतने हमारे मुंह में जीव है। ये भैया तो पूरे ब्रह्मांड मुंह में रख के बैठे हैं, क्या बात है। एक दूसरी बात हमने कही, हमको अभी भी हंसी उस बात पे आई है, जैसे मानो ये घर है ना, विष्णु जी कहते हैं ये मेरा घर है तो मैं इसका मालिक हूँ, ठीक है अच्छी बात है। फिर कहेगा ठीक है हमारी पत्नी रीटा है, हम दो घर में रहते हैं, फिर हमारा अखिलेश घर में रहता है, राधिका घर में रहती है, 4 हो गए, लेकिन इस घर में चींटियां मकोड़ियां मच्छर कितने रहते हैं? वो जब बाहर जाते हैं किसी शादी में ना तो पूछते कहां से आते हैं, बोला मंगला नंबर 1 से आए हैं। वो भी अपने आप को कहते हैं कि हम यहां रहते हैं, उनका भी यही निवास स्थान है। ये चूहे बिल्ली जितने भी घर में रहते हैं ना, ये भी बाहर जाते हैं, इनकी अपनी मीटिंगें होती हैं, तब वो अपनी एड्रेस यही देके आते हैं। ہم اس کو اپنا مان کے بیٹھے ہیں, وہ بھی اس کو اپنا مانتے ہیں, پر وہ زیادہ ہے. کبھی الیکشن ہوئی تو ہم ہار جائیں گے, ہماری فیملی چھوٹی ہوتی جا رہے ہیں, ان کی فیملی بڑھ رہی. خوش مت ہو کہ آپ 2-4 کروڑ کے گھر میں رہ رہے ہو, آپ سے زیادہ اور رہ رہے ہیں اس میں, اور وہ بھی ایسا ہی کلیم کرتا ہے آج کل ریٹ بڑھا ہوا ہے. ہرے کرشنا. تو ایسے اسنکھیہ جیو اس برہمانڈ میں بھرمن کر رہے ہیں. کتنا چھوٹا جیو ہے, کیش کے اگر ہاں کے 10,000 حصے. یہ ہم کو ذرا نمرتا سکھانے کے لیے ہے کہ ہم کچھ بڑے نہیں ہیں, ایسے اسنکھیہ اور گھوم رہے ہیں, اور ہم پتہ نہیں کہاں کہاں سے پہلے گھوم کے آئے ہیں, بہت بڑے کوٹھی مکان کے مالک, فیکٹری گاڑیوں کے مالک. سیٹھ نے کسی سنت کو گھر میں بلایا, سنت جی گھر میں گئے تو سیٹھ جی کے اپنے بھاؤ سے بولا, یہ جو 10 فیکٹریاں گھر میں اپنی ہیں, یہ سامنے جو ٹرانسپورٹ سارا نگر اپنا ہے, یہ سارا جو ہے آپ دیکھتے ہیں, یہ سامنے فلیٹ پورے بن رہے ہیں, یہ اپنے ہیں. تو سنت بھگوان اور بھگوان کے بھکت چاہتے ہیں کہ اس جیون میں بھگوان جو کچھ دے اس کے وہ آپ کے بھاگے کا ہے, اس کو بھگوان کا دیا ہوا مان کر بھوگ کرو, لیکن بھگوان کو مت بھولو. لیکن جو تمہارے اندر یہ بھاو آ جاتا ہے میرا ہے تو اس کو اہنکار کہتے, اور اہنکار نہ بھگوان کو پسند ہے نہ بھگوان کے بھکتوں کو پسند ہے. تو سادھو نے کیا کہا کہ سمجھاؤں اس بچے کو. سادھو نے کیا کیا, اس کی ٹیبل کے اوپر جو دنیا کا گولا پڑا تھا ورلڈ میپ, اس نے بولا یہ کیا ہے؟ بولا یہ پوری دنیا کا گولا ہے. بولا اس میں آپ کا کنٹری کہاں ہے دکھاؤ, تو آپ کا دیش کہاں ہے؟ تو دیکھا دیش جو ہے اس کا 1 انچ کے ٹکڑے میں تھا, 1 انچ ہوگا دیش ہمارا گولے میں. بولا اس میں آپ کا شہر کہاں ہے؟ بولا اس کا تو نام نہیں ہے. بولا آپ کی فیکٹری دکان؟ بولا اس میں تو نہیں ہے. بولے دنیا بہت بڑی ہے, تمہارے پاس جو ہے یہ اس کے برابر کچھ بھی نہیں ہے, دنیا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. دنیا بہت بڑی ہے, ہمارے گاؤں کا نام بھی اس دنیا کے میپ میں نہیں ہے, تو ہماری زمین جائیداد کا نام کہاں سے آئے گا؟ تو ایک دم سمجھ گئے سیٹھ کہ یہ مہاتما مجھے یہ کہنا چاہ رہا ہے جو کچھ بھگوان کا ہے. شیوا جی مہاراج جب بہت قلعے بنا رہے تھے تو ان کے گرو سمرتھ رام داس آئے تو بتانے لگے, گرو جی دیکھیے ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں. تو گرو جی سمجھ گئے کہ شیوا جی کو اہنکار ہو گیا ہے کہ ان سب لوگوں کو میں کھلاتا ہوں. گرو جی نے ایک پتھر کو توڑا اور پتھر کے اندر ایک جیو ملا, اور جیو کچھ کھا رہا تھا. بولا شیوا جی اس جیو کو کون کھلا رہا ہے؟ پتھر کے اندر چھوٹا سا جیو ہے, اس کو کون کھلا رہا ہے؟ ایک دم شیوا جی سمجھ گیا کہ گرو مجھے شکشا دینا چاہ رہا ہے کہ پتھر میں جیو کو جو کھلاتا ہے وہ چلتے پھرتے کو بھی کھلاتا ہے, تم کھلاتے ہو یہ مت مان. پتھر میں جیو پیدا کیا, اس کے بھی آگے رزق کر دھریا, اس کے آگے بھوجن رکھ دیا. شیر, شیر کے منہ میں کچھ جیووں کا بھوجن بھگوان نے رکھا ہے. شیر جب مانس کھا لیتا ہے دانتوں میں مانس اٹک جاتا ہے, ٹوتھ پک تو ہے نہیں اس کے پاس, وہ ایسے منہ کھول کے بیٹھتا ہے, اور کچھ جیو آتے ہیں اس کے اندر بیٹھ کے کھاتے ہیں. تو شیر کے مکھ میں بھی کسی کا بھوجن بھگوان نے رکھا ہے. لوگ شیر سے ڈرتے ہیں اور شیر ان کو کہتا ہے آئیے آئیے آپ اس کے اندر بیٹھ کے بھوجن کھائیے. تو کوئی کس کو کھلاتا ہے یہ بھی سوچنا ٹھیک نہیں. یہ نمرتا آ جائے تو دنیا کے اندر سب بھکتی کا پہلا لکشن ہے نمرتا. ودیا دداتی ونیم, اگر صحیح معنی میں ودیا ہے تو نمرتا آئے گی. ترنادپی سنیچے ن ترورپی سہیشنو ن امانی ن مان دے ن کیرتنیہ سداری, اگر بھگوان کا بھکت ہو اور بھگوان کا نام لیتے ہو تو اپنے آپ کو گلی میں گرے ہوئے گھاس کے تنکے سے بھی زیادہ نمر بناؤ, اور پیڑ سے بھی زیادہ سہنشیل بناؤ. سہنشیلتا بھی ہونی چاہیے, کبھی طوفان آئے گا, کبھی برسات آئے گی, کبھی آندھی آئے گی, لیکن سب کو سہن کرنا ہے. ہر سمے ایک جیسا سمے نہیں رہتا ہے, سمے سب جگہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے. کبھی دن ہوتی ہے, کبھی رات ہوتی ہے, کبھی بادل ہوتی ہے, کبھی برسات ہوتی ہے, کبھی کوئی راجا ہوتا ہے, کبھی دروپتی تھی, کبھی تارا تھی راج کی رانی, آج بنی ہے دھولیانی, دھوئے کپڑا گنا, گندے کپڑے دھو رہی ہے, وہ راج کی رانی تھی, تارا مہاراج ہریش چندر کی پتنی تھی, اور دروپتی پانچ پانڈو کی پتنی تھی سیندری بن کے وراٹ کی مہارانی کی جو ہے شرنگار کر رہی تھی. سمے بہت بلوان ہوتا ہے, کبھی اوپر جاتا ہے کبھی کوئی نیچے جاتا ہے. اس لیے اس دنیا کے اندر جیسے بھگوان رکھے جیسے بھی درخت رکھے رام تو سرد رہیے. یہ بہت بڑا سندر شبد سنتوں نے کہہ دیا ہے. تو اس برہمانڈ میں اسنکھ جیو, یہ پہلی بات جیو کی سائز بتا کے پھر مہاپرو کہیں گے اس جیو میں دو بھاگ ہیں, ایک تو بےچارے چل نہیں سکتے ہیں ایک چل سکتے ہیں, ایک چل سکتے ایک چل نہیں سکتے. جو چل نہیں سکتے ان کو چھوڑو, جو چل سکتے ہیں وہ تین جگہ پہ ہے, یا آکاش میں ہے یا پرتھوی پہ ہے یا جل میں ہے. جو چل سکتے ہیں آکاش میں ہے یا پرتھوی میں ہے یا جل میں ہے. اور ان سب چلنے والوں میں سے سب سے الپ سنکھیا مانو کی ہے, سب میں الپ سنکھیا مانو کی ہے. اب یہاں سے آگے کی کتھا کل کریں گے. بہت بہت دھنیواد, ہرے کرشنا. اب سمے کے اوپر ادھک آکرمن نہیں کریں گے. کسی کا کوئی پرشن جگیاسا ہے تو ویکتیگت روپ سے ہم سے پوچھ سکتے ہیں, لیکن آپ سب لوگ بھکت کر کیرتن کریں گے. پرساد کی ویوستھا بھی چالو ہونی چاہیے, ساتھ میں چلنا چاہیے. ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 راما ہرے راما راما.